स्वागत है आपका नमस्कार भारत में, मैं हूं इकबाल अहमद। तारीख 24 अप्रैल और दिन बुधवार। श्रीलंका धमाकों में मारे गए भारतीयों के शव बेंगलुरु पहुंचे। कन्हैया कुमार के समर्थन में बेगूसराय पहुंचे जावेद अख्तर।
कन्हैया सिर्फ एक इंसान नहीं, एक सिंबल हो गया है और बहुत पॉपुलर सिंबल है प्रोग्रेसिव थॉट्स का, सेकुलरिज्म का, मजदूर किसान कमजोर वर्ग से हमदर्दी का।
टिकट कटने पर उदित राज का छलका दर्द।
दलित नेता चाहिए नहीं पार्टी, दलित नेता चाहिए नहीं, दलित चाहिए, दलित चमचा चाहिए।
सैम पित्रोदा से होगी खास बातचीत।
कि जब सरकार बनेगी तो पहले तो जितनी इंस्टीट्यूशंस हैं उनको ऑटोनॉमी देना काम बहुत बड़ा है।
और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले सुनते हैं विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, दिलनवाज पाशा से। श्रीलंका के राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना ने देश की पुलिस और सुरक्षा बलों में अहम बदलाव करने का वादा किया है। रविवार को ईस्टर के मौके पर हुए बड़े हमलों के बाद उन्होंने ये कदम उठाया है। अगले 24 घंटे में शीर्ष अधिकारियों में बदलाव किए जा सकते हैं। राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना ने कहा, अगले कुछ सप्ताह में मैं पुलिस और सुरक्षा बलों में मूल चूल बदलाव करूंगा। मैं अगले 24 घंटे के भीतर ही सुरक्षा बलों के प्रमुखों को भी बदल दूंगा। रिपोर्टों में यह भी कहा गया है कि श्रीलंका गृह युद्ध के दिनों की तरह हर जिले में सुरक्षा समितियां बना सकता है। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री रनिल विक्रमासिंघे ने हमलों के बारे में पहले से कोई भी खुफिया अलर्ट की जानकारी होने से इनकार किया है। इसी बीच इस्लामिक स्टेट ने इन हमलों की जिम्मेदारी ली है। श्रीलंका सरकार इन दावों की भी जांच कर रही है। अफ्रीकी यूनियन ने लीबिया में जारी लड़ाई को तुरंत और बिना शर्त रोकने की मांग की है। काहिरा में मुलाकात के बाद अफ्रीकी यूनियन के नेताओं ने लीबिया में लड़ रहे सभी पक्षों से संयम बरतने की अपील की है। अफ्रीकी यूनियन का मौजूदा अध्यक्ष देश मिस्र लीबिया की राजधानी त्रिपोली पर नियंत्रण की कोशिश कर रहे सैन्य कमांडर खलीफा हफ्तार का समर्थन करता है। मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतह अल सीसी ने कहा, आज हम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से पूरी जिम्मेदारी लेने बिना किसी शर्त के राजनीतिक समाधान निकालने की मांग करते हैं। हम संयुक्त राष्ट्र के दूत गस्साम सलाम से अपील करते हैं कि वो राजनीतिक वार्ता शुरू करें, लीबिया के सभी पक्षों को इसमें शामिल करें, बिना अपवाद के सभी पक्षों से बराबर दूरी भी अपनाएं। रिपोर्टों के मुताबिक लीबिया की अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त सरकार का समर्थन कर रहे बलों ने हफ्तार के बलों को राजधानी त्रिपोली से 60 किलोमीटर दूर खदेड़ दिया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक ताजा लड़ाई में 260 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। उत्तर कोरिया की मीडिया के मुताबिक देश के नेता किम जोंग उन रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ मुलाकात के लिए रूस के लिए रवाना हो गए हैं। किम जोंग उन ट्रेन के जरिए पूर्वी रूस के व्लादिवोस्तोक तक जाएंगे। वो राष्ट्रपति पुतिन के साथ पहली मुलाकात शहर के दक्षिण में स्थित एक द्वीप पर एक विश्वविद्यालय में करेंगे। विश्लेषकों का मानना है कि किम जोंग उन अपनी आर्थिक विकास नीतियों के लिए विदेशी समर्थन जुटा रहे हैं। फरवरी में अमरीकी राष्ट्रपति ट्रंप के साथ हनोई में हुई उनकी मुलाकात नाकाम रही थी। अमेरिका के ट्रेजरी विभाग ने कांग्रेस की ओर से दी गई समय सीमा समाप्त होने के बाद भी राष्ट्रपति ट्रंप के आयकर के बारे में जानकारी नहीं दी है। डेमोक्रेटिक पार्टी के नियंत्रण वाली कांग्रेस की समिति ने ट्रेजरी विभाग से कहा है कि वो गुरुवार दोपहर तक राष्ट्रपति ट्रंप के पिछले 6 साल के आयकर का ब्यौरा दे, लेकिन ट्रेजरी का कहना है कि इस आदेश का पालन करना करदाता की निजता का हनन होगा। विभाग की ओर से कहा गया है कि उसके अधिवक्ता इस मामले पर राय मशवरा करने के लिए 2 और सप्ताह का समय चाहते हैं। बीबीसी संवाददाता के मुताबिक राष्ट्रपति ट्रंप के आयकर को लेकर शुरू हुआ विवाद सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच सकता है। अमेरिका की कई कंपनियों के उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन करने के बाद वॉल स्ट्रीट रिकॉर्ड ऊंचे स्तर तक पहुंच गया है। S&P 500 सूचकांक 2933 तक पहुंच गया है और सितंबर में हासिल किए गए सबसे ऊंचे आंकड़े को पार कर गया है। बीबीसी समाचार।
एक बार फिर स्वागत है आपका बीबीसी हिंदी के कार्यक्रम दिन नमस्कार भारत में। मैं हूं इकबाल अहमद। आज अप्रैल की 24 तारीख और दिन है बुधवार। इस वक्त हो चुके हैं भारत में 6:34 और 44 सेकंड। आप इस कार्यक्रम को रेडियो के साथ साथ अपने मोबाइल फोन पर भी लाइव सुन सकते हैं। कार्यक्रम की शुरुआत श्रीलंका से। श्रीलंका में चर्च और होटलों को निशाना बनाते हुए किए गए धमाकों में 300 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। इनमें 10 भारतीय भी हैं। उनमें से 5 सिर्फ कर्नाटक के हैं, जो जनता दल सेकुलर पार्टी के कार्यकर्ता थे। उनके शव को बेंगलुरु लाया गया। इस बारे में और जानकारी के लिए हमारे साथी दिलनवाज पाशा ने बेंगलुरु स्थित वरिष्ठ पत्रकार और हमारे सहयोगी इमरान कुरैशी से बात की।
जी, अभी तक 5 लोगों के शव भारत बेंगलुरु पहुंचे हैं। कल रात को एसआर नागराज का शव पहुंचा था पहले करीब 8:30-9 बजे, और उसके बाद अभी थोड़ी देर पहले मतलब 3:30-4 बजे की फ्लाइट से शिवन्ना और शिव कुमार के जी हनुमंतराया, लक्ष्मी नारायण और एम रंगप्पा के शव पहुंचे हैं। ये ज्यादातर जनता दल सेकुलर के कार्यकर्ता हैं, जो 18 अप्रैल के इलेक्शन के बाद होटल शंग्रीला पहुंचे थे कुछ आधा घंटा पहले, जब ये बम विस्फोट हुआ था। मतलब वो रूम में चेक इन किए थे और उसके फौरन बाद नाश्ते के लिए उस डाइनिंग हॉल एरिया में गए थे और टेबल पे बैठे ही थे कि बम विस्फोट हुआ था और उसमें पूरे लोग मारे गए। और अब इसके बाद शायद दोपहर को 1:45 बजे एक फ्लाइट आने वाली है, जो रेगुलर फ्लाइट है, फिर कोलंबो बेंगलुरु की फ्लाइट, उसमें बाकी के शव आने वाले हैं।
जो लोग मारे गए हैं, क्या इनके परिवारों की सरकार की ओर से कोई मदद की जा रही है? इनके शवों को लाने में राज्य सरकार की ओर से कुछ कदम उठाए गए?
हाँ, राज्य के मुख्यमंत्री HD कुमार स्वामी खुद, इंडियन सुषमा स्वराज जो हमारे विदेश मंत्री हैं और इंडियन हाई कमीशन जो कोलंबो में है, उनके साथ संपर्क में थे और उनके साथ बातचीत तो 2 दिन से चली रही थी। तो उसके बाद उनके वो ही इंतजाम किए थे। और जो जनता दल सेकुलर की जो MLA हैं नेलमंगला के, डॉक्टर के यशुमूर्ति, और SR विश्वनाथ श्रीलंका के जो सदस्य हैं SR विश्वनाथ, दोनों खुद कोलंबो गए थे और शवों को वापस ले आने में बहुत मदद की है।
ये थे बेंगलुरु से इमरान कुरैशी। तो चुनावों के बाद छुट्टियां मनाने गए थे JDS के ये कार्यकर्ता। दिल्ली के तिहाड़ जेल में विचाराधीन कैदी शब्बीर की पीठ पर ओम गोदने के मामले में अब कड़कड़ डूमा अदालत में 30 अप्रैल को सुनवाई होगी, क्योंकि जेल प्रशासन अदालत में अपनी जांच रिपोर्ट पेश करने में असमर्थ रहा है। पहले अदालत ने जांच रिपोर्ट पेश करने के लिए 22 अप्रैल का दिन तय किया था, मगर तिहाड़ जेल की तरफ से कोर्ट में मौजूद अधिकारी ने 2 सप्ताह का समय मांगा, जिसे अदालत ने खारिज करते हुए अगले 1 सप्ताह के भीतर ही रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया। वहीं विचाराधीन कैदी के घर वालों का कहना है कि उसे जेल में पहले से ही किया जा रहा था। दिल्ली से सलमान रावि की रिपोर्ट।
तिहाड़ जेल का प्रशासन तय सीमा के भीतर अपनी जांच रिपोर्ट पेश करने में असफल रहा है और अब अदालत ने उसे सिर्फ 1 सप्ताह का वक्त दिया है। जेल के अधिकारी कहते हैं कि मामले की जांच चल रही है और तब तक मीडिया के साथ कुछ भी साझा नहीं किया जा सकता है। अधिकारी कहते हैं कि जांच पूरी होने तक आरोपी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। तिहाड़ जेल के अतिरिक्त पुलिस महानिरीक्षक राजकुमार ने BBC से बात करते हुए कहा,
नहीं अभी नहीं हुई, अभी चल रही है। जब तक जांच नहीं होगी कैसे लेंगे, किस लिए? जब कोई गलती दिखाई देगी तब तो कुछ करेंगे। जांच नहीं होगी, कोर्ट का डायरेक्शन नहीं आएगा, तब तक क्या एक्शन कर सकते? 2 सप्ताह के भीतर आप इंक्वायरी करके बताएं तो 2 सप्ताह में हम बता देंगे।
विचाराधीन कैदी शब्बीर के पिता अय्यूब ने घटना के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि सबसे पहले उनके बेटे ने अपनी पत्नी और भाई को बताया कि किस तरह उसे जेल में प्रताड़ित किया गया।
वाइफ और उसका छोटा भाई मुलाकात पे गए थे, तो उसने अपनी वाइफ को इस बारे में बताया और सीट खोल कर दिखाई। जब वो वहाँ से मुलाकात करके आ गए, उन्होंने मुझे बताया, मैंने अपने वकील को बताया, जाकर तिहाड़ जेल पर मुलाकात को भेजा कि भाई मेरे बच्चे के साथ देखो जाके आप मुलाकात करो। शब्बीर ने सारी डिटेल अपने वकील को बताई, वकील साहब ने यहाँ पर कोर्ट में अर्जी लगाई कि ऐसा हो रहा है हमारे साथ।
अय्यूब का कहना है कि उनका परिवार पहलवानों का है और अखाड़े में उनके गुरु भी हिंदू थे।
मेरे गुरु हिंदू हैं, अखाड़े के जवाहर पहलवान गुरु धर्मपाल यादव 11,011 टन लगाए थे मेरे बड़े गुरु ने, जो गुरु धर्मपाल यादव थे। छोटे भाई हैं उनके धर्मपाल जी के, तो वो 70% हिंदू भाई हैं। तो मेरे घर वाले जब अखाड़े में दाखिल कर कर आए थे भाई, तो उन्होंने ये कहा था कि मांस तुम्हारा हड्डी मुझे दे देना, मेरे गुरु से कह के आए थे जवाहर पहलवान से, मेरे फादर।
बाप रे।
जी, मेरे गुरु की घरवाली कल कोर्ट में मिली थी मुझे, कोर्ट में गई नहीं थी, वो कहने लगी हमें तो बहुत दुख है, ये क्या हुआ बेटा, मन गई देख लो हमारे साथ ऐसा हो रहा है, अरे ये तो गलत हुआ, हम तो तुम्हें औलाद मानते हैं, हमारी गुरु की घरवाली कह रही थी।
शब्बीर के वकील जगमोहन ने आरोप लगाया है कि तिहाड़ जेल का प्रशासन जांच रिपोर्ट पेश करने में आनाकानी कर रहा है, मगर उनका यह भी कहना है कि अदालत के निर्देश के बाद शब्बीर को दूसरी जेल में स्थानांतरित कर दिया गया है।
17 को फिर कोर्ट में उसकी डेट थी, वो कोर्ट में आने के बाद उन्होंने फिर जज साहब को सारी बातें बताई, तो जज साहब ने उसकी टी शर्ट उतरवा के देखी तो बिल्कुल क्लियर दिख रहा था और बहुत गहरा निशान था, कम से कम 1-2 सूत गहरा निशान था जले हुए का। तो फिर जज साहब ने कहा कि वकील साहब इनका फोटोग्राफ भी लीजिए और हमें भी ये फोटोग्राफ जो है हार्ड कॉपी बनवा के दीजिए इसकी। तो हमने उनके फोटोग्राफ लिए, फिर जज साहब ने जेल सुपरिटेंडेंट के लिए मतलब DIG के लिए ऑर्डर लिख कर भेजा उनको इन्वेस्टिगेशन करने के लिए इस मैटर में। और वो पहले भी कई बार शिकायत कर चुका था, लेकिन जो चौहान साहब हैं वो ये कहते हैं कि ये जेल ट्रांसफर करवाना चाहता था इसलिए इन्हें हम पे दबाव बनाने के लिए ये, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है।
जगमोहन कहते हैं कि प्रताड़ना के अलावा जेल अधीक्षक पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने का भी आरोप है।
हाँ, क्रुअल्टी टॉर्चर बनता है और इनलीगल कन्फाइनमेंट भी बनता है, है क्या नहीं, और किसी की धार्मिक भावनाओं से खेलना 166 IPC के सेक्शन में वो भी बनता है, 295A वो भी बनता है। तो जिस तरीके की ये रिपोर्ट फाइल करेंगे अकॉर्डिंग टू उसके हम जो है फिर लीगल एक्शन लेंगे इनके अगेंस्ट।
इस मामले में अदालत 30 अप्रैल को अपना फैसला सुनाएगी। तिहाड़ जेल प्रशासन की जांच रिपोर्ट के बाद ही तय होगा कि आरोपित जेल अधीक्षक के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाती है। हालांकि जेल प्रशासन का आरोप है कि विचाराधीन कैदी दूसरी जेल में जाने के लिए इस तरह के आरोप लगाता आया है। सलमान रावी, BBC दिल्ली।
और अब बात लोकसभा चुनाव की। कल यानी मंगलवार को तीसरे चरण का मतदान संपन्न हो गया। चौथे चरण का चुनाव 29 अप्रैल को होगा। उनमें बिहार की चर्चित सीट बेगूसराय भी होगी, जहां से JNU से छात्र नेता कन्हैया कुमार कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार हैं। उनके समर्थन में कई सेलिब्रिटी बेगूसराय पहुंच रहे हैं। गीतकार जावेद अख्तर भी कन्हैया के लिए बेगूसराय पहुंचे, तो उस वक्त हमारे साथी रजनीश कुमार ने उनसे बातचीत की।
सांसद कोई रेवोल्यूशन नहीं ले आता पार्लियामेंट में, लेकिन कन्हैया जो है एक सांसद से ज़्यादा है और एक उम्मीदवार से ज़्यादा है। कन्हैया सिर्फ एक इंसान नहीं, एक सिंबल हो गया है और बहुत पॉपुलर सिंबल है, प्रोग्रेसिव थॉट्स का, सेकुलरिज्म का, मजदूर किसान कमज़ोर वर्ग से हमदर्दी का, वो एक सिंबल बन गया है। ये कि उन्हें मालूम है कि कन्हैया जैसे लोग वो बातों की याद दिलाते हैं जिनकी ये हुकूमत चाहती है कि याद आम इंसान को ना आए।
जाहिर साहब, लेकिन एक बहुत हैरान करने वाली बात है कि आप अन्ना मूवमेंट जब चल रहा था तो आप खिलाफ में बोलते थे, क्या आपको आभास था कि यहाँ पे कुछ चीज़ें ठीक नहीं हैं और आप इस बार खुलकर साथ हैं?
मुझे बहुत खुशी है कि आपको बात याद है। अन्ना मूवमेंट जब अन्ना जो थे वो एकदम मसाया बन गए थे, मैंने तब ट्वीट किया था कि 2 बरस बाद इसका कोई नाम नहीं जानेगा। आज अन्ना कहाँ है, यही मैंने कहा था, इसलिए वो फेक लग रहा था, वो फेक था। तो अब मेरी बात पे भरोसा कीजिए कि मैं फेक और रियल को पहचानता हूँ।
जी जावेद साहब, आपने एक अपील की कन्हैया को वोट न देना, BJP को वोट करना है। दूसरी तरफ आपने एक नेता का जिक्र किया और कहा कि उन्होंने अपील की कि मुसलमान वोट बटने मत देना, क्या इन दोनों बातों में कंट्राडिक्शन नहीं है?
नहीं, बिल्कुल कंट्राडिक्शन नहीं है। ये अगर आप इस तरह से कि मुसलमान वोट ये जा रहे हैं और हिंदू वोट ये जा रहे हैं और सिख वोट है, तो ये क्या डेमोक्रेसी है? कोई डेमोक्रेसी हुई? डेमोक्रेसी देखिए क्या है, डेमोक्रेसी में ये माना जाता है कि वोटिंग होगी या इवन पार्लियामेंट में हाथ उठाए जाएंगे और जिस चीज़ की तरफ मेजोरिटी होगी उसे मान लिया जाएगा, जिसकी तरफ माइनॉरिटी होगी वो नहीं माना जाएगा। यही तो है डेमोक्रेसी। लेकिन डेमोक्रेसी साथ में मान के चलती है कि माइनॉरिटी और मेजॉरिटी परमानेंट नहीं है, ये अलग अलग विषय पे बदलेंगी, अलग अलग उसूलों पे, अलग अलग मौके पे ये कुछ और हो जाएंगी। अगर आप माइनॉरिटी की और मेजॉरिटी की कोई ऐसी परिभाषा बना लेते हैं जो परमानेंट है, जैसे कि धर्म और वर्ग से होती है, तो फिर तो डेमोक्रेसी उसी दिन ख़त्म हो गई। अगर कोई आदमी किसी आदमी को इसलिए वोट दे रहा है कि ये आदमी मुसलमान है, तो वो इतना बहुत बड़ा पाप कर रहा है। तुम इसलिए उसे वोट दे रहे हो मुसलमान है, शर्मानी चाहिए तुमको। हिंदुस्तानी हो
गया, मुसलमानों की मजबूरी नहीं है हिंदुस्तान में?
क्या मजबूरी है? आप तो फिर सबकी मजबूरी हो जाएगी। आप जिन हालत में भी हैं, आप किस चीज के लिए लड़ रहे हैं? सेकुलरिज्म के लिए लड़ रहे हैं ना, तो सेकुलरिज्म बिना सेकुलर हुए आप नहीं लड़ सकते, आपको सेकुलर होना।
सेकुलरिज्म के जो पॉपुलर चेहरे हैं जैसे लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव, जो बड़े ही लोकप्रिय जुमले की तरह इस्तेमाल करते हैं सेकुलरिज्म को, अभी जब उनको मौका आया कि कुछ यहाँ पे साझे कैंडिडेट हो सकते थे तो उन्होंने इस मौके को गंवा दिया, क्या आपको भी ऐसा लगता
है? राजनीति के क्या मजबूरियाँ हैं और क्या उसमें पेचीदगी है वो सब तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं माफ़ कीजिएगा, अब तक इस देश में जो सेकुलरिज्म रही है मैं उससे कोई बहुत सेटिस्फाइड नहीं हूँ।
तो जावेद अख्तर से बात कर रहे थे बीबीसी संवाददाता रजनीश कुमार। और अब बात करते हैं दिल्ली की। उत्तर पश्चिमी दिल्ली लोकसभा सीट से मौजूदा सांसद उदित राज को इस बार बीजेपी ने टिकट नहीं दिया। उदित राज का आरोप है कि पार्टी ने उन्हें बिना बताए ही उनका टिकट काट दिया, जबकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उन्हें चेतावनी पहले ही दे दी थी। इस बारे में क्या कहना है उदित राज का, यही जानने की कोशिश की हमारे साथ ही भूमिका राय ने।
मैं उसकी प्रतिक्रिया तो अभी इस समय तक नहीं करूंगा, लेकिन मुझे इस बात का बड़ा सदमा पहुंचा है कि टिकट काटा क्यों, क्या इसलिए टिकट काट दिया गया कि मैं बेस्ट परफॉर्मर रहा हूं और इनके आंतरिक सर्वे में भी सबसे ज्यादा वेनेबिलिटी और पॉपुलरिटी मेरी थी दिल्ली में, तो क्या इसके वजह से मेरा टिकट काटा गया है, या मैं दलितों की आवाज उठाता रहता था?
जी, भाजपा हमेशा कहती है सबका साथ सबका विकास, जबकि आप कह रहे हैं कि शायद आपको दलित समर्थन करने की वजह से इस तरीके का परिणाम देखने को मिल रहा है।
समझ रहा हूँ, और इसका क्या निष्कर्ष निकालूं? निष्कर्ष तो यही निकलता है, मुझे ही एकमात्र दलित नेता था भाजपा में। भाजपा में जितने सारे दलित हैं, जो नेता टाइप के हैं, जो चुनाव लड़ रहे हैं, उन सबको मिला दिया जाए तो भी मैं सबके ऊपर भारी पड़ता हूँ, तो मेरे भारीपन के वजह से, मेरी सपोर्ट के वजह से, मेरी आवाज के साथ के वजह से ऐसा हुआ है क्या?
इंडियन जस्टिस पार्टी का आपने फिर क्या सोच करके आपने विलय किया था?
वो मेरी गलती रही, शायद मैं भोला भाला था, और जैसे अपना दल है या और पार्टियों ने बार्गेनिंग करी वैसा नहीं किया मैंने, इसलिए ऐसा हुआ।
पर नरेंद्र मोदी तो अपने हर भाषण में सर कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, दलित गरीब सबको साथ लेकर के चलने वाली।
एक ही मात्र दलित पार्टी में था जो दलित नेता, दलितों ने जिसको नेता बनाया, पार्टी ने नहीं नेता बनाया, तो उसके साथ में क्या व्यवहार हुआ है, तो इससे क्या अंदाजा नहीं लग सकता कि क्या है।
आपसे पहले सावित्री बाई फुले ने भी, जो बहराइच से थी सांसद, उन्होंने इस्तीफा दिया।
दलित नेता चाहिए नहीं पार्टी, दलित नेता चाहिए नहीं, दलित चाहिए, दलित चमचा चाहिए।
आपको सर, आपने आपके एक बयान में कहा गया कि केजरीवाल जी ने आपको कुछ महीने पहले ही सूचित कर दिया था।
केजरीवाल ने वार्न किया था, सावधान किया था कि आपका टिकट कट जाए।
क्या उन्होंने कोई आधार बताया था?
अब आधार हो क्यों मैं उनसे पूछूं, उन्होंने ऐसा कहा था।
ये थे उदित राज। गांधी परिवार के बहुत करीबी माने जाने वाले सैम पित्रोदा का कहना है कि चुनाव के बाद अगर कांग्रेस पार्टी सरकार बनाती है तो सरकारी और दूसरी संस्थाओं से आरएसएस से जुड़े लोगों को बाहर किया जाएगा। सैम पित्रोदा का दावा है कि संस्थाओं के सुचारू रूप से काम न कर पाने की एक बहुत बड़ी वजह उन संस्थाओं में संघ से जुड़े लोगों को घुसा दिया जाना है, जो हर काम में दखलंदाजी करते रहते हैं। सैम पित्रोदा पार्टी के मैनिफेस्टो कमेटी के भी सदस्य हैं। उनसे बात की हमारे साथी फैसल मोहम्मद अली ने और पूछा कि घोषणा पत्र में सैनिकों को मिले विशेष अधिकार, अफ्सपा और राजद्रोह कानून को समाप्त करने का जो वादा है वो किस आधार पर किया गया है।
इसमें जो 52 मुद्दे हैं उसमें से आपने एक मुद्दा लिया, वो मुद्दा सिक्योरिटी सेफ्टी का है, और ये मुद्दा जो सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने बहुत सोच विचार के बनाया है। हम ये मुद्दे पे काम नहीं कर रहे थे क्योंकि उस सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स का काम था, हमारा काम था इसको कंसॉलिडेट करना एज ए कमिटी मेंबर, हमारा काम था मेनली फोकस करना डेवलपमेंटली इश्यूज पे। लेकिन हम इतना कहेंगे कि जो भी चीजें ये मैनिफेस्टो में लिखी गई है वी विल डिलीवर।
लेकिन 52 जो बातें कही आपने उसका, ये दो बातें भी उसका हिस्सा है, बाकी तो बातों के बारे में
जो प्रॉमिस दी है उसमें,
तो ये प्रॉमिस के बारे में अगर मैं बात करूं, सैम पित्रोदा साहब, अगर आफ्सपा के बारे में और सेडिशन एक्ट के बारे में, तो
मैं कहूंगा कि ये
कितने दिनों में इसको
ये आपको बात
इंप्लीमेंट करेगी,
ये आपको बात करनी है शायद हमारे सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स से, क्योंकि वो उनका मुद्दा है, वो इम्प्लीमेंट करेंगे। लेकिन 52 चीज़ों के बारे में तो मैं कह नहीं सकता।
तो ये बताइए कि इसमें जो 52 में जो आपके जो सब्जेक्ट हैं उसमें कौन सी ऐसी होगी जो पहले 100 दिनों में जो है आप इम्प्लीमेंट कर देंगे सरकार बनती है तो?
कि जब सरकार बनेगी तो पहले तो जितनी इंस्टीट्यूशंस हैं उनको ऑटोनॉमी देना काम बहुत बड़ा है, क्योंकि अभी इंस्टीट्यूशंस आर बीइंग सफोकेटेड, सब जगह दूसरे लोगों को बिठा दिया गया है। मैं आपको एक एग्जांपल दूं, शिकागो में कौंसल जनरल की ऑफिस में कोई आरएसएस ऑफिसर को बिठा दिया गया था जो हर रोज डिसीजन लिया करते थे। तो हमारे पास कौंसल जनरल ने बताया हमें कि हम तो काम ही नहीं कर सकते, हम हैं आईएफएस ऑफिसर और कोई आरएसएस को बिठा दिया यहाँ पे। ये सब चीज़ों पे बहुत ध्यान देना है।
तो इसका मतलब क्लीनिंग अप होगी उन सबको,
क्लीनिंग अप पहला काम है बहुत बड़ा। दूसरा काम है ये मैनिफेस्टो को लेके सब कमेटी बना के 52 कहना है कि भाई आप कितना काम कौन से दिन में कर सकते हैं, 50 दिन में क्या कर सकते हैं, 100 डेज में क्या कर सकते हैं, 150 डेज में क्या कर सकते हैं।
तो वो आपने आइडेंटिफाई किया है कि कहाँ कहाँ आरएसएस के लोग भर दिए गए हैं और किन किन लोगों को निकाला?
पीपल विल टेल अस।
देखिए आपका तो कोई इंटरनल मैकेनिज्म,
हमारा थोड़ा इंटरनल मैकेनिज्म भी है, हमने तो एक मामूली सा एग्जांपल दिया आपको।
तो उसके अलावा कहाँ कहाँ से उनको आप
सब जगह है, यूनिवर्सिटीज में है, ओके, गवर्नमेंट में है, सो वी विल हैव टू वर्क ऑन इट।
तो हम बड़े बदलाव की उम्मीद करें अगर कांग्रेस की हुकूमत या मिलीजुली सरकार बनती है?
बिल्कुल, सब एवरीबॉडी हैज टू बी गिवन ऑटोनॉमी भाई, वी आर अ डेमोक्रेसी।
कितनी सीटों की उम्मीद कर रहे हैं आप लोग?
इट्स टू अर्ली, बहुत जल्द है कुछ कहना। और इसमें क्या है कि सबके अलग अलग ओपिनियन रहते हैं, आप किससे बात करते हैं, हमारे पास वैसी एक्सपर्टी है नहीं कि मैं आपको एक नंबर दे सकूं। ओके, मैं इतना कह सकता हूं कि हम कॉन्फिडेंट हैं कि हम गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे सबके साथ से, शायद ओके वो डिसाइड करेंगे जो सब साथ में मिलके, ये पार्लियामेंट्री सिस्टम है, ये कोई प्रेसिडेंशियल सिस्टम नहीं है।
नहीं, बट कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी ही कैंडिडेट होंगे?
कांग्रेस पार्टीज एमपीज विल डिसाइड, आई थिंक सो, बट कांग्रेस पार्टी एमपीज विल डिसाइड दैट इट विल बी देयर।
क्योंकि आप तो गांधी परिवार के बहुत करीबी हैं, राहुल गांधी के साथ भी काम किया है आपने, राजीव गांधी के साथ भी, सोनिया गांधी के साथ भी, तो क्या सेंस है कि कोई एक ऐसा मैकेनिज्म होगा जैसे मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी का मैकेनिज्म था, या कोई दूसरा मैकेनिज्म होगा?
देखिए, राहुल गांधी हमारी तरफ से इज द राइट कैंडिडेट। राहुल गांधी इज यंग, एनर्जेटिक, इतनी पिटाई लोगों ने की है उनकी लास्ट 10 साल में, पप्पू है, ये है, वो है, झूठ सब, तो भी वो हिम्मत से खड़े हो सके अगेंस्ट ऑल द ऑड। वो एक ही है अभी जो फाइट करते हैं, प्रियंका ने भी ज्वाइन किया।
अच्छा पितृदत्त साहब, आपने प्रियंका गांधी का नाम लिया, तो क्या एक सवाल पूछूं कि लगता है कि प्रियंका गांधी थोड़ा लेट से आई, अगर पहले आती तो उसका असर शायद होता, चुनाव जब ऑलमोस्ट सर पे थे तब उनका नाम डिक्लेयर हुआ?
वो तो उन्हें डिसाइड करना था टाइमिंग,
लेकिन आपके हिसाब से पहले आती तो? क्योंकि
हम कहते हैं पहले आती तो अच्छा रहता,
थोड़ा देर हो गई।
बिल्कुल देर नहीं होगी, तो जब उन्होंने जब डिसाइड किया इट इज द राइट टाइम।
तो अभी उसी तरह का संशय बना हुआ है उनके लड़ने पर कि लड़ेंगे चुनाव या नहीं लड़ेंगे?
वो डिसाइड करेंगे
नहीं, बट अल्टीमेटली डिसाइड तो कांग्रेस अध्यक्ष को करना है कि टिकट देंगे कि नहीं देंगे।
वो दोनों को बीच में डिसाइड करना है, कांग्रेस अध्यक्ष को और कैंडिडेट को।
नहीं, लेकिन आप उनके अगेंस्ट में इतना मजबूत कैंडिडेट है देश के प्रधानमंत्री और नरेंद्र मोदी के बारे में एक बात तो मानेंगे कि अच्छे वक्ता हैं या लोगों को खींच सकते हैं या सपने दिखा सकते हैं, जो भी कहिए, तो उनसे उनका मुकाबला होगा, तो मुकाबला तो टफ है।
तो उनको सोचना है ना, कैंडिडेट को सोचना है।
पार्टी में क्या सोच है?
क्योंकि पार्टी में तो सब लोग कह रहे हैं कि यू नो प्रियंका गांधी शुड फाइट। ओके, पार्टी वॉन्ट्स हर टू फाइट, पीपल वॉन्ट हर टू फाइट,
तो फाइट करेंगे पार्टी।
वो तो उन्हें डिसाइड करना है,
से लड़ा रहे हैं आप लोग उनको?
नहीं नहीं, उन्हें डिसाइड करना है ना, वो तो उनका डिसीजन है।
ये थे सैम पित्रोदा, जिनसे बात कर रहे थे फैसल मोहम्मद अली। और अब अखबारों की समीक्षा का वक्त हो चुका है, बताएं दिलनवाज
जी। इकबाल, कल तीसरे चरण का चुनाव था, सबसे बड़ा चरण था ये, और इसी से जुड़ी खबरें सभी अखबारों के पहले पन्ने पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मतदान करने से पहले अपनी मां से मुलाकात की, उनकी तस्वीरें भी अखबारों के पहले पन्ने पर हैं। मेरे हाथ में जनसत्ता है, जिसमें अहमदाबाद में मंगलवार को एक दिव्यांग मतदाता के पैर के नाखून में स्याही लगाते मतदान कर्मचारियों की तस्वीर है। और दैनिक भास्कर में तस्वीर प्रकाशित हुई है, सीआरपीएफ के एक जवान ने एक बच्चे को गोद में ले रखा है, उसकी मां वोट डालने गई थी। वहीं विपक्ष ने एक बार फिर ईवीएम का सवाल उठाया है और इस खबर को भी आज अखबारों ने जगह दी है। न भारत टाइम्स ने ठीक उसी जगह आज अरविंद केजरीवाल का बयान छापा है, जहां कल उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का बयान छापा था और आज लिखा है, राहुल गांधी गठबंधन करना ही नहीं चाहते केजरीवाल, आप कांग्रेस में तालमेल की संभावना से केजरीवाल ने इनकार किया है। कल राहुल गांधी का बयान यहाँ छपा था, उन्होंने कहा था कि अगर आम आदमी पार्टी चाहे तो दिल्ली में 4-3 के फार्मूले पर गठबंधन हो सकता है। और जब बात भारतीय चुनावों की हो रही है तो बात करते हैं जापान में हुए स्थानीय निकाय चुनावों की, जहां एक भारतीय ने वार्ड मेंबर का चुनाव जीता है और ये जापान में चुनाव जीतने वाले कोई पहले भारतीय हैं। नाम है पुराणिक योगेंद्र, 41 साल के योगेंद्र जापान में योगी के नाम से चर्चित हैं। और अब बात चुनाव आयोग की, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बनी उनकी बायोपिक फिल्म की, विवेक ओबराय अभिनीत ये फिल्म है। फिलहाल चुनाव आयोग ने फिल्म देखी है और कहा है कि इसकी रिलीज़ टाली जाएगी, चुनावों के बाद ही रिलीज़ होगी।
बहुत शुक्रिया दिलनवाज आपका अखबारों की समीक्षा के लिए। और अब खेल समाचार।
खेल समाचारों के साथ मैं हूं आदेश कुमार गुप्त। आईपीएल 12 में कल शेन वाटसन ने 96 रनों की पारी खेलकर अपने आलोचकों को करारा जवाब तो दिया ही, साथ ही अपनी टीम चेन्नई को हैदराबाद के खिलाफ 6 विकेट से जीत में अहम योगदान भी दिया। चेन्नई सुपर किंग्स के सामने जीत के लिए 176 रनों का लक्ष्य था, जो उसने शेन वाटसन के 96 रनों के अलावा सुरेश रैना के 38 और अंबाती रायडू के नाबाद 21 रन की मदद से 19.5 ओवर में 4 विकेट खोकर हासिल कर लिया। शेन वाटसन ने केवल 53 गेंदों पर 9 चौके और 6 छक्कों के सहारे 96 रनों की तूफानी पारी खेली, वो भुवनेश्वर कुमार का शिकार बने। शेन वाटसन और सुरेश रैना के बीच दूसरे विकेट के लिए 77 रनों की साझेदारी भी हुई। हैदराबाद के भुवनेश्वर कुमार, संदीप शर्मा और राशिद खान ने एक एक विकेट हासिल किया। इससे पहले हैदराबाद ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी की दावत पाकर निर्धारित 20 ओवर में 3 विकेट खोकर 175 रन बनाए। हैदराबाद के मनीष पांडे ने केवल 49 गेंदों पर 7 चौके और 3 छक्कों के सहारे नाबाद 83 रन बनाए। उनके अलावा सलामी बल्लेबाज डेविड वार्नर ने भी 57 रन बनाए। चेन्नई के हरभजन सिंह ने 39 रन देकर 2 विकेट हासिल किए। मैच समाप्त होने के बाद शेन वाटसन ने कहा कि आईपीएल से पहले पीएसएल और बिग बैश खेलने से फायदा मिला।
Especially like that before the tournament, the form that I'd come off playing the PSL and even at times during the Big Bash, I know I'd been in good nick. So just getting my head right, getting my technique right.
कल की जीत के साथ ही चेन्नई ने 16 अंकों के साथ अंतिम 4 यानी प्लेऑफ में भी सबसे पहले जगह बना ली। आज आईपीएल में बेंगलोर में मेजबान रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और किंग्स 11 पंजाब आमने सामने होंगी। उधर चीन में आयोजित की जा रही एशियन कुश्ती चैंपियनशिप में भारत के बजरंग पूनिया ने दमदार दाव लगाते हुए कल 65 किलो भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता, लेकिन भारत के प्रवीण राणा 69 किलो भार वर्ग के फाइनल में ईरान के बेहमान मोहम्मद तैमूरी से 3-0 से हार गए और उन्हें रजत पदक मिला। इनके अलावा सत्यव्रत कादियान ने 97 किलो भार वर्ग में कांस्य पदक जीता।
तो खेल समाचार सुना रहे थे आदेश कुमार गुप्त। अब वक्त हो चला है प्रमुख समाचारों का।
श्रीलंका के राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना ने देश की पुलिस और सुरक्षा बलों में अहम बदलाव करने का वादा किया है। अफ्रीकी यूनियन ने लीबिया में जारी लड़ाई को तुरंत और बिना शर्त रोकने की मांग की है। काहिरा में मुलाकात के बाद अफ्रीकी यूनियन के नेताओं ने लीबिया में लड़ रहे सभी पक्षों से संयम बरतने की अपील की है। उत्तर कोरिया की मीडिया के मुताबिक देश के नेता किम जोंग उन रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ मुलाकात के लिए रूस रवाना हो गए हैं। किम जोंग उन ट्रेन के जरिए पूर्वी रूस के व्लादिवोस्तोक तक जाएंगे। अमेरिका के ट्रेजरी विभाग ने कांग्रेस की ओर से दी गई समय सीमा समाप्त होने के बाद भी राष्ट्रपति ट्रंप के आयकर के बारे में जानकारी नहीं दी है। अमेरिका की कई कंपनियों के उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन करने के बाद वॉल स्ट्रीट रिकॉर्ड ऊंचे स्तर तक पहुंच गया है। ब्राजील की एक अपीलीय अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति लूला डा सिल्वा को दी गई 12 साल की सजा को कम करने का फैसला दिया है। बीबीसी समाचार।
तो नमस्कार, भारत का ये अंक यहीं समाप्त होता है। आज स्टूडियो की जिम्मेदारी संभाली शाकिर आलम ने। آپ سے اگلی ملاقات ہوگی شام 7:30 بجے کارکرم دن بھر میں، لیکن پل پل بدلتی خبروں کے لیے آپ 24 گھنٹے آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ bbchindi.com پر۔ اور اب اقبال احمد کو اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ دیجیے اجازت، نمسکار۔